आगे चलते हैं। अहद नबी में सहाबियात हिजाब की सख्ती से पाबंदी करती थी, हत्ता के हालत अहराम में भी गैर महरम मर्दों से अपने चेहरे छुपाती थी। अब यहाँ देखिए फीस मना कितना मारूफ मसला कि अहराम की हालत में तो हम पर्दा कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात है जब तब नहीं कर सकते तो फिर अब क्यों करें, और वहाँ तो अल्लाह का घर होता है तो फिर क्या। तो आप इस हदीस को पढ़िए, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा कालत وكان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه ثم زكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حتى حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा वाक़िया इफ बयान करते हुए फरमाती हैं कि सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा ज़खवानी, ये उनका पूरा नाम है, लश्कर के पीछे आया करते थे ताकि अगर कोई गिरी पड़ी चीज़ हो तो उठा ले, या कोई कमज़ोर या मरीज़ पीछे रह जाए तो इसे साथ ले आए। जब वो मेरे ठिकाने पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी सो रहा है, यानी जब मुँह तक चादर ली हो तो पता तो नहीं चलता ना ये औरत है या मर्द है। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले वो मुझे देख चुके थे, क्योंकि जब अब सोते हुए शख्स को एकदम पास आकर कोई इन्ना लिल्ला के तो बेसाख्तगी में मुंह से चादर उतरी। जब चादर उतरी तो हज़रत सुफान को पता चला कि ये मर्द नहीं बल्कि औरत, और औरत भी आयशा, क्योंकि वो पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देख चुके थे। अब ये कितनी बड़ी दलील है, और अब देखिए बुखारी की रिवायत है, हज़रत आयशा का ये कहना कि वो पर्दे के हुक्म से पहले मुझे देख चुके थे, इससे क्या मुराद है कि पर्दा चेहरे का है कि नहीं है। इतनी सीधी सी बात है, ना समझे तो उलझने बहुत हैं, इश्काल बहुत है, अंदर बहुत सारे इल्तबास हैं, और समझना चाहें तो इसमें कोई आज तक पिछली कह लीजिए कि 13 सदियों तक तो इस इशू में किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। अगर कहीं ना कहीं था इल्लामा ज़ाहरा मिन्हा की तफसीर में तो उसमें कम अज़ कम ये ज़रूर, जिसने भी कहा कि चेहरा खोल सकते हैं हाथों और पाँव की तरह, कि खाली चेहरा खोल सकते हैं, सजा सजाया मेकअप शुदा पूरे अरूज के ऊपर जोबन पे किया हुआ तो कहीं नहीं बताया। देखिए मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये खुल के बात करने का मौका है इस वक्त हिजाब का मौजू, सीधी सी बात है, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। ठीक है फिर वही बात है, मरहले हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आपके चेहरे पे अगर एक क्रीम भी ऐसी लग गई जो आपकी स्किन की बेस बनती है, जिससे रंग ढंग बदल जाता है, जिसमें कुछ कुछ सुरमा डाल दिया, कोई आपने आंखों पे कुछ लगा लिया, तो फिर वो चेहरा दुनिया के किसी कानून के मुताबिक यानी किसी इमाम किसी फिक्र की रोशनी में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी रिवायत ले आए उसकी इजाज़त नहीं। जिन आयमा कराम ने बड़े बड़े नाम लोग लेते हैं उसमें, अगर उन्होंने चेहरे के पर्दे से मुस्तस्ना करार दिया इल्ला मा ज़ाहरा मिन्हा में, अगर उन्होंने इस चीज़ को रख भी दिया कि जो खुद जाहिर हो जाए, मान लेते हैं एक 10% 20-50% भी मान लीजिए कि चेहरा है, लेकिन वो ऐसा स्पाट चेहरा जैसे दीवार है, हल्की सी भी अगर कोई चीज़ लगती है तो वो चेहरा छुपेगा। अब आप देखिए इस बात पर, मैं भी औरत हूँ आप भी औरतें हैं, अब देखिए अगर आप अपने बालों को नॉर्मल अंदाज से बांध के और अपने आप को सजा भी लेती हैं ना, आप तब भी अच्छी लगती हैं। आप खूबसूरत सा हिजाब लपेट के देखें अपने चेहरे को, ऐसे चेहरा खिल के आता है मुंह के आगे भला जैसे फ्रेम के अंदर तस्वीर होती है। अगर आप तैयार हुए हों तो हिजाब में बल्कि आपको ज़्यादा अच्छा चेहरा लगता है, इसीलिए कई लोग फिर हिजाब उतारते ही नहीं है, आदत नहीं होती एक तो, दूसरा ये कि उसमें ज़्यादा खूबसूरती होती है। तो बात को समझने का मतलब यह है कि आप बाहर अगर अपने चेहरे को छुपाते हैं तो फिर आपकी जो दिल करता है करें, लेकिन यहां यह बात कितनी वाज़ह है कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले वो इनको देख चुके थे। खैर वापस चलिए, इन्होंने मुझे देखकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये क्यों पढ़ा? क्योंकि हदीस में आता है कि जब कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए या किसी की कोई चीज खो जाए तो ये पढ़े। खैर आंख खुल गई तो मेरी आंख खुल गई, मैंने फौरन अपना चेहरा ओढ़नी से ढांप लिया। अब बोले एक हदीस में दूसरी तीसरी रिवायत आ गई, अपना चेहरा ढांप लिया, इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब देखिए यह सरेरा बात चेहरा ढांकने की आई, हालांकि यहां निकाब का लफ्ज कहीं नहीं आ रहा, आप उसको क्या कहेंगे? आम हालात में अपने काब करें, आमतौर पर सीधे साधे सुबह उठे कंघी की मुंह धोया चलो फ्रेश अप हुए निकल आए, निकाब करते हैं हर दिन और जिस दिन खुशी का मौका आ जाए, आप 16 सिंघार नहीं 20 सिंघार किए हुए हो, कहते हैं बस आज खोल दो, आज भाई की शादी है, ये है आजमाइश, आज बहन की शादी है, बेटे की शादी है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है किसी की बात के बेटे की शादी पे वो तो हिजाब में निकाब में और दूसरे उसकी चादरें खींच रही हैं, उसका अबाया खींच रही हैं कि अब आज भी आप पहनेंगी तो इतने अच्छे कपड़े क्यों बनाए थे। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने भी तो गाउन ही पहने हुए हैं ना, ये उस दौर की बात है जब गाउन फैशन में था, आज से 2-4 साल पहले, अभी भी है पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कि आपने ये काला गाउन ऊपर ज़रूर पहनना है, हमारी तरह का कोई गाउन पहन ले तो गाउन गाउन ही होता। बात समझिए, आप अपना गुनाह तो लें, दूसरे का क्यों लेते हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह की बातों से लोग फिर हर एक फेस नहीं कर पाता, तो कहते हम जाते ही नहीं, अब हम नहीं करते। और कई लोग हैं आम दिनों पे चलते, आज क्या जी भाई की शादी, सारी जिंदगी उनको पर्दे में देखा, शादी वाले दे मुंह खोल के बैठी हुई है, क्या है जी क्या बात, भाई की शादी है। अब ये बाल बनाने वाली ने कहा था इस पे दुपट्टा ना लगाना, और मेकअप करने वाली ने कहा था इसके ऊपर ये ना करना, तो आपका जो दिल करता करे। देखिए हम दो कश्तियों में सवार हैं, वरना इनमें से कुछ भी बुरा नहीं। मैं तो कहती हूँ भाई की शादी है, आप हिजाब ले ही ना, अगर आपने अच्छा ढीला ढाला कपड़ा पहनना है तो ना लें दुपट्टा भी, क्या फर्क पड़ता है। बट मसला क्या है कि हमने अंकल्स और आंटीज और चचाज और फलां कजन और भाभी उन सबको भी खुश कर, वो भी टेढ़ी नजरों से देख तो रहे होते हैं, वो जिस रंग से देखते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई गुनाह की नजरों से देखता होगा, लेकिन हुसन का कशिश होती है, अपनी बीवियों से भी तकाबुल होता है, अपनी बहनों से भी होता है। हर उम्र का इंसान उसको देखने वाला मुख्तलिफ उम्र का इंसान होता है। तो बहरहाल दुआ कीजिए, नामुमकिन नहीं है, बहुत आसान है और बहुत प्रैक्टिकल है। जितना भी इंसान इसके ऊपर सोचे, अक्ल इस बात की गवाही देती है कि ये ऐन फितरत के करीब है। चेहरा ठांप लेते हैं लोग जब सड़कों पे काम करते हैं, कोई बुरा नहीं कहता, वो जो मुंह पे लगा लेते हैं धूप से बचते हैं सन ब्लॉक्स, सर्जिन मुंह छुपाते हैं कि नहीं छुपाते, कोई नहीं रोकता, नर्सों ने मुंह पे एक छिक्कू सा लगाया होता कि नहीं, तो फिर सिर्फ इतनी सी बात पे आप इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाते हैं। ये इशू तब तक है जब तक हम मुसलमान औरतें नहीं करती। मैं आपको एक छोटी सी यानी कहना चाहिए कि नसीहत दे दूंगी, जिस मुल्क में भी आप बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके मुल्क पे ये चीज़ बैन ना हो जाए, खबरें तो आती रहती हैं ना स्कूलों में बैन बोला, और एक कई कई जगह पोल फिरते हैं, ये पोल वो काम नहीं करेंगे जो आप करेंगी, आप काम करना शुरू कर दें। एक लॉयर के लफ्ज़ हैं, मैंने कहा हाउ कैन चेंज दिस ओपिनियन, कहते पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर दो, आज का वेस्ट लोगों से डरता है, आप लोगों की राय बदल दें, गवर्नमेंट अपनी ये बैन करना और नकाब और हिजाब पे पाबंदियां उठा लेगी। आज से 50-40 साल पहले हिजाब एक इशू था, हिजाब नहीं कर सकते थे, आज निकाब है, जिन सिस्टर्स ने थोड़ा सा स्ट्रेस बर्दाश्त किया जमीरी, आज हिजाब को इशू नहीं। मैंने सबसे ज्यादा हिजाब उन मुल्कों में बिकते देखे और बनते देखे लेखे जहां पाबंदियां, वजह क्या है कि जितना भी आप पीछे जाएंगे अल्लाह ताला आपको उतना आगे करेगा। तो बहरहाल अपने लिए तौफीक मांगे, अब इसमें फिर किसी को ना देखें, किसी को ना कुछ कहें, आप चुपके से कह दे अल्लाह मेरी जिंदगी पता नहीं अब कितनी है, तो मुझे तौफीक दे दे, इतने साल मौज मस्तियां कर भी ली ना, और वैसे भी तो देखे वक्त के साथ हुसन ढल ही जाता, अगर लोगों के जहनों में हमारी खूबसूरत यादें हैं तो रहने दे, अब दिन ब दिन तो चेहरे पर झुरियां ही आनी है ना, कुछ बुढ़ापे के असरात होने हैं ना, तो अच्छा है कि लोग आपको कहें कि माशाल्लाह आखिरी वक्त तक बड़ी जवान थी। तो बहरहाल ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि जिस पे बहसें की, मैं इस इशू पे बिल्कुल बहस मुबाहसा क्वेश्चन आंसर नहीं मुझे अच्छा लगता। इस्तफ्ते कल्बक वलव अफ्तूक, अपने दिल से पूछ लो अगर कोई तुम्हें फतवा भी दे दे। फिर इसके बाद अगली रिवायत इसी से मिलती हुई है, अनस्मा बिन तबी बकर रदी अल्लाह अन्हा कालत कुन्ना नख्ती वजूहना मिनर रिजाली व कुन्ना नम तशितु कब्ल ज़ालिक। हज़रत अस्मा बिन तबी बकर फरमाती हम दुरान अहराम अपने चेहरे मर्दों से ढांप लेती थी, हालांकि इससे पहले हम कंघी वगैरह करने में मशगूल होती। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया। पहली रिवायत आयशा की, अब उसी की बहन और बड़ी बहन यानी दूसरी दलील है, और हालत अहराम में अगर मुंह छुपा रही हैं तो इसमें तो वो इशू खुद ब खुद ही आ रहा है ना चाहते हुए भी, कि आम हालात में फिर पहनती थी ना, ये मतलब है। अन फातिमा बिन्त अल मुनज़िरी रदी अल्लाह अन्हा अन्हा कालत कुन्ना नुखम्मिर वुजूहना व नहनु मुहरिमातुन व नहनु मअस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीकी फला तुनकिरहु अलैना। हज़रत फातिमा बिन्त मुनज़िर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं हम हालत अहराम में अपने चेहरों पर ओढ़नियाँ ले लेती, हमारे साथ हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक भी थी और वो हमें ऐसा करने से मना नहीं करती थी। इसे मालिक ने रिवायत किया। بات واضح ہے، اب کریں کیسے؟ سمپل فرق ہے، سلی بھی نقاب نہیں اوڑھنی، جیسے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بکل مارنے کا ایک انداز ہے۔ پہلے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے حرم یا اس کے ارد گرد، صحابیات گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار کرتی تھیں، اور صحراؤں میں گزرتے ہوئے ایک طویل عرصہ ایسا گزرتا تھا کہ کوئی دوسرا نہیں، اور اگر کوئی آ رہا ہے سواری پہ آگے سے آ رہا ہے تو وہ تو دور سے غبار اڑتا دکھے گا، پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو اس کی تو نظر آپ کے چہرے پہ نہیں پڑے گی۔ یہ آج بھی ایسے ہی ہے، جیسے آپ دیکھیں میں نقاب کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب کبھی رستے میں بالکل ویرانہ آتا ہے، مثلاً باہر ہے، خوبصورتی ہے، کوئی بھی نہیں ہے ادھر ادھر، آپ اپنی گاڑی میں آپ نقاب اٹھا لیں، کوئی ضروری ہے 4 گھنٹے آپ نقاب میں رہیں؟ جب باہر کوئی نہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے فریش ایئر لینے کو، یا آپ انجوائے کرتے ہیں، یا گرمی ہے، آپ ہٹا لیجئے۔ بعض دفعہ ایسی کیفیات نقاب لیتے ہوئے ہوتی ہیں، آپ ایسے سائڈوں سے ٹیڑھا کر لیتے ہیں، یعنی اگر اس دوپٹے کا کونا پکڑ کر میں یوں کر لوں ایسے، تو ادھر والوں کو میرا فیس نہیں دکھے گا، ادھر والوں کو۔ 10-10 گھنٹے کی جہاز میں فلائٹیں ہیں لی ہیں، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ ہے، ڈھیلا کر کے نقاب، میرا منہ سامنے سے کھلا ہوتا ہے، کیسے کہ جب میں بیٹھی ہوں تو میرے سامنے تو اگلی سیٹ ہے نا، اور آپ نے دیکھا کتنا فاصلہ ہوتا ہے، 1 یا 1.5 فٹ۔ الحمدللہ موسٹلی 98% ہسبینڈ ہوتے ہیں، پہلی سائڈ پہ میں ہوں، اب ادھر یہ ہیں، اگر تیسری پہ کوئی ہے بھی تو میں اپنا نقاب ایسے کھول لیتی ہوں، یعنی ڈھیلا کر کے، جس کا آپ لمبا کریں، نہ ادھر سے دکھتا ہے نہ ادھر سے، سامنے تو ویسی کھڑکی ہے، اور کھانا کھانا پینا کچھ بھی نہیں۔ مت سوچیے یہ مشکل ہے، یہ اتنا آسان ہے کہ آپ مور پریکٹیکل، بلکہ آپ بیوقوف نہیں لگتے، سب کے سامنے کھاتے پیتے تو صرف بات کہنے، اور سوتے وقت کئی لوگ منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں وہاں بھی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو صرف یہ اپنے دل کو منوانے کی بات ہے، ادروائز یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ جو بہت ہی ہم نے کافی ڈسکس کر بھی لیا لیکن اب یہاں براہ راست بھی آ گیا، عورت کو اپنے خاوند کے عزا کیا، عزیز کی جمع، یعنی خاوند کے رشتہ دار، جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، ان لاز، یعنی عورت کو اپنے خاوند یعنی شوہر کے گھر والوں یعنی عزا یا رشتہ داروں سے بھی حجاب کرنا چاہیے۔ عن عقبت بن معامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصاری یا رسول اللہ افرائیت الحمو قال الحمو الموت۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ علیحدہ ہونے سے بچو، وہی بات، تنہائی میں ایک مرد عورت کے ساتھ نہ ہو، یا بہت سی عورتیں ہیں تو ایک مرد اندر ہے، یا اس کا اپوزٹ، بہت سے مردوں میں ایک عورت ہے، سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کی اللہ کے رسول، عورت کے دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم کہتے ہیں دیور کو، اور یاد رکھیں ہم سے مراد ہماری اصطلاح کا صرف دیور نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے، دیور شوہر کا چھوٹا بھائی، تو جیٹھ کون ہے، بڑا بھائی، ایسے ہی ہے نا، تو آپ یہاں یہ نہ سمجھیے کہ بڑے بھائی سے پردہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو بھائی برابر ہے یا باپ برابر ہے۔ عربی زبان میں آپ ڈکشنری میں جا کے چیک کیجئے، ہم کہتے ہیں شوہر کے بھائی کو، یعنی چھوٹا ہے یا بڑا، اور نندوئی کو بھی، اور ان کے بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں، یعنی جیٹھ کے بچے، نندوں کے بچے، یعنی غیر محرم جو بھی مرد کی طرف سے آتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو موت ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے علمی حلقوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی، موت سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں کوئی انسان موت کو ملنا نہیں چاہتا، آپ اور میں نہیں چاہتے کہ میں تنہا بیٹھی ہوں اور مجھے موت آ جائے، ایسا نہیں ہے نا۔ تو ہسبینڈ کے جو بھائی یا جو نندو، ان سے موت کی طرح ڈرنا چاہیے، کیا مطلب، ان سے تنہا نہیں ہونا چاہیے، بچنے کی صورت ہونی چاہیے۔ اس کی کئی تعویلات ہیں، بس آپ کے میرے لیے اتنا ہے کہ بلا وجہ، نمبر 1 بے تکلفی، نمبر 2 خلوت، اور لاڈ پیار نہیں دکھانا چاہیے۔ ہمارا اصل میں ڈیسنٹ ہونے کا معیار اور ہے، اور اسلام کا کچھ اور، اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے آپ کھلائیے پلائیے، خدمت کیجئے، لیکن آپ بیٹے اور نند کے بیٹے میں کوئی فرق نہ رہے، یہ درست نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ دوسرے کو بھی کہتے ہیں بیٹا ذرا گاڑی نکالنا، اور وہ بھی واقعی یہ سوچتے ہیں کہ میری ماں کے برابر ہے، میری مامی ہے، چچی ہے، تائی ہے، پھر بھی لمٹس ہونی چاہیے، آپ کا اپنا کوئی ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔